अरमान सिंघानिया ने इशिका के साथ एक रेस की थी। हालांकि उसका इरादा यही था कि वो सबके सामने इशिका को बेइज्जत करे। इसके लिए उसने चेजिंग विंड को मारा और वो बेकाबू होकर दौड़ने लगा। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अरमान का घोड़ा बुरी तरह बेकाबू हो गया था और अरमान की जान पर बनाई थी। ऐसे में इशिका ने बहादुरी दिखाई और अरमान की जान बचाई थी। अरमान का घोड़ा शांत होते ही अरमान और इशिका घोड़े से उतरे। सब उनके पास दौड़कर आए। उनमें अभिमन्यु सबसे आगे था। वो इशिका के पास गया और बिना किसी के परवाह किए उसने इशिका को गले लगा लिया था। पिछले कुछ मिनट में जो भी हुआ उससे उसकी जान हलक में आ गई थी। इशिका ने अभिमन्यु की पीठ पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ अभिमन्यु को होश आया और वो इशिका से अलग हो गया था। उसके बाद अभिमन्यु ने गुस्से में अरमान की तरफ देखकर कहा, उम्मीद है कि आज तुमने हॉर्स राइडिंग का अच्छा खासा मजा ले लिया है, तो आगे से किसी को चैलेंज मत करना। अरमान कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वहीं आसपास खड़े लोग हैरान थे कि इशिका ने जब किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली तो वो इस तरह घोड़े को कैसे शांत कर सकती हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, मैंने सुना था चेजिंग विंड को भी इसी तरह शांत किया था और वो उसके ट्रेनर ने किया था। वो ट्रेनर शायद एक लड़की थी। क्या वो आप हैं मिसेज राजवंश? जैसे ही उस आदमी ने ये कहा, अरमान हैरानी से इशिका की तरफ देखने लगा। अभिमन्यु को भी अपना डाउट थोड़ा बहुत सही लगने लगा, लेकिन इशिका सबसे सामने अपनी किसी भी काबिलियत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। इशिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर बैठते ही मैंने महसूस किया कि इसकी पीठ पर एक लकड़ी का टुकड़ा अटका हुआ था। शायद दर्द की वजह से ये बेकाबू हो गया था। मैंने बस उसे निकाला था और इसे थोड़ा सा सहलाया तो ये ठीक हो गया। बोलते हुए इशिका ने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाया। हालांकि ये उसने खुद ही घोड़े को काबू करने के लिए जो लगाम होती थी उससे तोड़ा था। अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस वो इस बात का शुक्रगुजार था कि आज उसकी जान बच गई। इसी बीच नक्श और आयशा गाड़ी में वहां पर पहुंचे। नक्श ने अरमान की तरफ देखा, वो ठीक था। फिर वो गुस्से में इशिका से बोला, इशिका, तुम हमेशा से खुद को दूसरों से सुपीरियर साबित करना चाहती हो। देखा, तुम्हारी वजह से आज मिस्टर सिंघानिया की जान पर बनाई थी। बोलते हुए उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर आगे कहा, आज सारी गलती इशिका की है, तो चाचू आई थिंक आपको मिस्टर सिंघानिया से माफी मांगनी चाहिए। नक्श अरमान की इतनी खुशामद इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसकी आगे काफी मदद कर सकता था। उसकी शब्दों से अरमान को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी अभिमन्यु ने ना दिखने वाली सार्कास्टिक स्माइल के साथ पूछा, तुम्हें किसी तरह का सॉरी चाहिए अरमान? नहीं, अरमान बोला। फिर वो कुछ पल रुका और इशिका की तरफ देखते हुए बोला, मिसेज राजवंश, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको और मिस्टर राजवंश को कोई जरूरत पड़े तो मुझे खुशी होगी अगर मैं कोई हेल्प कर पाऊं। अरमान की बात सुनकर नक्श और आयशा हैरान रह गए। वो दूर थे इसलिए उन्हें नहीं पता था कि इशिका ने अरमान की जान बचाई है। कहां अरमान इशिका को सबक सिखाने के मकसद से ये सब कर रहा था और अब वो उसका एहसानमंद हो गया था। हॉर्स राइडिंग के बाद वहां लंच का प्रोग्राम रखा गया था, जिसके लिए अरमान नक्श और आयशा के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी में वापस जा रहे थे, जबकि उनसे अलग इशिका और अभिमन्यु इस वक्त चेजिंग विंड पर बैठे हुए थे। इशिका आगे थी जबकि अभिमन्यु उसके पीछे था। अभिमन्यु ने अभी भी इशिका की कमर पर हाथ रख रखा था ताकि वो गिर ना जाए। अगर अरमान उन्हें इस तरह देखता तो वो यही कहता कि वो दोनों वहां हॉर्स राइडिंग के लिए नहीं बल्कि रोमांस करने के लिए आए हैं। जो भी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए अभिमन्यु शांत था। अचानक उसने इशिका से कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग नहीं आती है। इशिका ने पलटकर अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने कब कहा मुझे नहीं आती है, बस मैंने ये कहा कि मुझे हॉर्स राइडिंग अच्छी लगती है। हाँ, मैंने ही गलत समझ लिया, अभिमन्यु ने इशिका के करीब खिसकते हुए कहा। इस वक्त उन दोनों के नोज आपस में टच हो रहे थे। अभिमन्यु कुछ पल रुका और फिर धीरे से कहा, अब मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। और वो क्या? इशिका ने झट से पूछा। सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ बचा है जो मेरी पत्नी नहीं कर सकती है, अभिमन्यु ने थोड़ा प्राउडली कहा। उसने जब इशिका को मेरी पत्नी कहा तो इशिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। इशिका ब्लश कर रही थी। उसने नजरें झुकाकर कहा, अभी भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, और वो क्या? अभिमन्यु ने पूछा। मुझे किसी की तरह इमोशंस छुपाने नहीं आते। लाइक कोई स्माइल कर रहा होता है फिर भी सामने वाला बता नहीं सकता कि उसके चेहरे पर स्माइल है, इशिका ने शरारती अंदाज में कहा। वो यहाँ अभिमन्यु की बात कर रही थी, जो अगर मुस्कुरा भी रहा होता तो उसके चेहरे पर स्माइल नहीं दिखती थी, वो बस आंखों में ही सिमट कर रह जाती थी। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आ गई, जो अब इशिका देख सकती थी। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों सबके बीच पहुंच चुके थे। अभिमन्यु जानता था कि इशिका को अच्छे से राइडिंग आती है, फिर भी उसने खुद उतरने के बाद इशिका को नीचे उतारा। वहां से आते ही अभिमन्यु इशिका को हॉल में लेकर गया और फिर उसे पानी दिया।
वो काफी टाइम से राइडिंग कर रही थी, इस वजह से थक गई थी। इशिका और अभिमन्यु साथ में बैठे हुए थे, तभी वहां पर कियारा राघव के साथ आई। वो जल्दी से इशिका के गले लगाते हुए बोली, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना आज रात को हम डिनर पर मिलने ही वाले थे। कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, इशिका ने मुस्कुराकर कहा और फिर कियारा से अलग हो गई। वो दोनों बातें कर रही थी तभी राघव ने कहा, अच्छा किया तुम इशिका के साथ रहो, मैं बस अरमान को सी ऑफ करके आता हूँ। अच्छा तो वो घमंडी इंसान भी यहाँ पर आया हुआ है, कियारा ने मुंह बनाकर कहा। वो थोड़ा लेट आई थी, इस वजह से उसे पता नहीं था कि इशिका ने थोड़ी देर पहले अरमान की जान बचाई थी। वहीं दूर से अरमान राघव और कियारा को देख रहा था। उनके पास में नक्श और आयशा भी खड़े थे। उनकी तरफ देखते हुए अरमान ने पूछा, तो तुम्हारी नाजायज बहन राघव मित्तल जैसे शख्स को जानती है? हाँ, क्योंकि थोड़े दिनों पहले उसने राघव मित्तल की बहन कियारा की जान बचाई थी और बदले में उनसे काफी कुछ वसूला भी था। आपको पता भी है कि कियारा की जान बचाने के लिए इशिका ने राघव मित्तल की मदद से अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की और उसके लिए रॉ मटेरियल तक मंगवाया था, वो भी फ्री में। आयशा ने अपनी आदत के मुताबिक बात को घुमा फिरा कर बताया। नक्श ने उसका साथ देते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो जान चुकी थी कि कियारा कौन है। मुझे लगता है कि अरमान सर की जान भी उसने इसी वजह से बचाई होगी, क्योंकि वो जानती है कि उनकी क्या हैसियत है। अभी अभी इशिका को लेकर अरमान की राय बदली थी और वो उसके बारे में अच्छा सोच रहा था, लेकिन नक्श और आयशा की बातों ने उसे फिर से मैनिपुलेट कर दिया था। उनकी बातें सुनकर अरमान से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। राघव उसके पास आता उससे पहले ही अरमान वहां पहुंच गया था। वहां जाते ही अरमान ने राघव से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर रहे हो? एक पूरी कंपनी को फ्री में रॉ मटेरियल देना, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? मुझे लगा था कि इसने इंसानियत के नाते मेरी जान बचाई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पता चल रहा है। एक ही सिटी से होने की वजह से अरमान और कियारा एक दूसरे को पहले से जानते थे। अरमान की बातें सुनकर कियारा को पता चला कि इशिका ने अरमान की जान बचाई थी।
कियारा ने सिर हिलाकर कहा, इशिका ऐसी ही है, वो बिना सोचे समझे सामने वाले की मदद करती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए था। राघव ने कियारा को इशारे से चुप रहने के लिए कहा, लेकिन अरमान चुप नहीं रहने वाला था। उसने गुस्से में कहा, देखा तुम्हारी बहन इस नाजायज लड़की की बातों में आकर किस तरह बदतमीजी से बात कर रही है। खैर मुझे क्या, जो करना है करो। इतना कहकर अरमान वहां से जाने को हुआ तभी राघव ने पीछे से तेज आवाज में कहा, मेरा छोड़ो, लेकिन तुम जरूर गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, पहले उनकी सच्चाई पता कर लेना, बाद में उनका फेवर करना। राघव का इशारा यहां नक्श और आयशा की तरफ था जो अरमान से थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे। अरमान ने उसे इग्नोर किया और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही कियारा ने इशिका से कहा, इशिका क्यों ना तुम डिनर से थोड़ा पहले मेरे साथ अभी घर पर चलो, हम साथ में बहुत सारी बातें करेंगे। कियारा इशिका का मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इशिका ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इशिका चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए आ गई, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। अरमान और बाकी लोगों की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। इशिका की आंखें नम हो रही थीं। उसने धीरे से कहा, कितना कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन मेरे नाम के साथ में जो नाजायज शब्द जुड़ा हुआ है, शायद वो मुझसे कभी अलग नहीं होगा। अगर मैं अभिमन्यु के बजाय किसी नॉर्मल इंसान से शादी करती तो शायद इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मेरी वजह से अभिमन्यु को भी इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा है। इशिका चेंज करने के बजाय वहां खड़ी हुई थी, तभी किसी ने दरवाजा खोला। वो अभिमन्यु था, जो इशिका के चेहरे की उदासी को समझ गया था। जब भी इशिका अकेला महसूस करती थी, अभिमन्यु न जाने कहां से उसके पास आ जाता था। अभिमन्यु ने कमरे का दरवाजा बंद किया और इशिका के पास आकर उसे एक टेबल पर बिठाया। अभिमन्यु इशिका के सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था। उसने इशिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिसन इशिका, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, हमारी शादी एक नॉर्मल शादी की तरह नहीं है, पर फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया है बिना तुम्हारे बैकग्राउंड जाने। तो मेरी पत्नी हो और इस हिसाब से सबको तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी होगी हर हाल में। तुम चाहो तो अभी मैं उस अरमान सिंघानिया को सबक सिखा सकता हूँ। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभार बुरा लगता है, पर तुम सच में पास होते हो तो अच्छा महसूस होता है। तुम मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की तरह हो, जो मुझे कभी अंधेरे में नहीं खोने दोगे, इशिका ने जवाब दिया। इसी के साथ अभिमन्यु ने खड़े होकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो काफी देर तक उसे सहलाता रहा, जब तक इशिका को अच्छा महसूस नहीं होने लगा। लगभग 10 मिनट बाद इशिका उससे अलग हुई। अभिमन्यु ने इशारे से इशिका को सब ठीक होने का पूछा तो उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने आगे कहा, मुझे एक मीटिंग में जाना है, डिनर के बाद में फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद अभिमन्यु बाहर आ गया। इशिका ने चेंज किया और फिर कियारा के साथ उनके घर जाने के लिए निकल गई। कियारा ने गोवा में रहने की जिद की थी, इसलिए मित्तल फैमिली ने वहां एक मिला खरीद लिया था जो कोइंसिडेंटली सिंघानिया मेंशन के पास ही था।
इशिका जब वहां पहुंची तो उसने एक नज़र सिंघानिया मेंशन की तरफ देखा। उसे याद आया कि आखिरी बार आदर्श ने उसे साफ मना किया था कि वो उनके घर में कदम भी नहीं रखेंगी, तो इशिका ने अपनी नज़रें फेर ली और कियारा के साथ उनके घर आ गई। वहीं मिस्टर मित्तल इशिका को वो फोटो दिखाने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब हो रहे थे। इशिका, राघव और कियारा वहां पहुंचे तो गौतम हल्का गुस्से में बोले, क्या जरूरत थी रेस कोर्स में इतना टाइम लगाने की? अगर पहले आ जाते तो अब तक मैं मिस सिंघानिया को वो फोटो दिखा चुका होता। कोई बात नहीं डैड, अब दिखा दीजिएगा, राघव ने शांति से कहा और अंदर से फोल्डर लाने के लिए चला गया। लगभग दो मिनट बाद राघव वापस आया और उसने अपना लैपटॉप मिस्टर मित्तल को दे दिया था। गौतम ने जल्दी से वो फोटो निकाली और इशिका पर दिखाते हुए कहा, मैं इस औरत की बात कर रहा हूँ, देखो ये लगभग तुम्हारी तरह लगती है, बस आंखों के कलर और माथे को छोड़ दिया जाए तो तुम दोनों की शक्ल लगभग एक जैसी है। इनका माथा थोड़ा उभरा हुआ है जबकि तुम्हारा सपाट है, इनसे थोड़ा लंबा भी। इशिका ने फोटो को गौर से देखा। फोटो पुरानी होने की वजह से उतना क्लियर नहीं थी, उसे ज्यादा जूम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो साफ देख पा रहे थे कि इस फोटो में एक राघव जैसे दिखने वाला आदमी था, वो शायद मिस्टर गौतम मित्तल थे। फिर इशिका की नज़र बीच में खड़ी औरत पर गई जिसने सिल्क की महंगी साड़ी पहनी हुई थी। अब तक लोग इशिका को राधिका की बेटी बताते जरूर थे लेकिन दोनों की शक्ल नहीं मिलती थी, लेकिन दोनों का बिहेवियर एक जितना ही शांत था। इशिका उस तस्वीर को गौर से देख रही थी, तभी गौतम ने कहा, ये शायद मैडम मर्चेंट है, देखो ये तुम्हारी तरह लग रही है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। इशिका ने हाँ में सिर हिलाया, वाकई वो औरत इशिका की तरह दिख रही थी। उसने धीरे से बुदबुदा कर कहा, तो क्या सच में राधिका आंटी मेरी मॉम है? इसी के साथ इशिका की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था।